एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का, आप मानिए, लगभग एक तिहाई हिस्सा है, पर जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारी नींद।
नमस्कार, और मैं हूं आपका दूसरा साथी इस दिलचस्प चर्चा में। और बात तो सही है, आजकल की भागदौड़, काम का प्रेशर, और हाँ, ये स्क्रीन्स जो पीछा ही नहीं छोड़ती।
हाँ,
ऐसा लगता है जैसे हम सब अनजाने में ही एक एक तरह की खामोश नींद की कमी की महामारी का हिस्सा बन गए हैं ना।
बिल्कुल, और इसीलिए आज ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि नींद सिर्फ थकावट मिटाना नहीं है, ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी, एक बायोलॉजिकल जरूरत है।
सही कहा।
और इसे समझने के लिए हम आज एक बहुत ही प्रभावशाली किताब का सहारा ले रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, आज हम गहरा गोता लगाएंगे मैथ्यू वॉकर की बहुत ही चर्चित किताब वाई वी स्लीप, यानी हम क्यों सोते हैं के विचारों में। ये किताब नींद के बारे में हमारी कई पुरानी धारणाओं को, आप कह सकते हैं, हिलाकर रख देती है।
सही, ये नींद के असली महत्व को उजागर करती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ज्ञान हमें दे कौन रहा है, ये मैथ्यू वॉकर है कौन। ये कोई सिर्फ कहानी सुनाने वाले नहीं है, बल्कि नींद के विज्ञान के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं।
हाँ बिल्कुल सही। देखिए, वो यूसी बर्कले में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इतना ही नहीं, वहाँ सेंटर फॉर ह्यूमन स्लीप साइंस के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के, समझिए, 20 साल से ज्यादा नींद पर रिसर्च करने में लगाए हैं। 100 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए हैं। तो मतलब वो जो भी कह रहे हैं वो हवा में नहीं, गहरे वैज्ञानिक अनुभव पर आधारित है।
और उनकी सबसे फास्ट बात पता है क्या है? वो इन मुश्किल वैज्ञानिक बातों को ना बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं।
हाँ ये तो है।
कई लोग तो उन्हें नींद का प्रचारक या स्लीप इवेंजलिस्ट भी कहते हैं। उनका एक मिशन है, एक जुनून है कि दुनिया को नींद के महत्व के बारे में जगाना है। ये समझाना कि भाई नींद कोई लग्जरी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि हमारी सेहत की, हमारी वेलबींग की बुनियाद है।
बिल्कुल। अब आते हैं इस किताब के मूल संदेश पर। देखिए, वॉकर बहुत साफ कहते हैं, नींद को कम आंकना बंद कीजिए। यह ना तो वक्त की बर्बादी है, ना ही कोई आलस की निशानी।
हाँ, वो तो सीधा तर्क देते हैं कि नींद हमारे फिजिकल, मेंटल हेल्थ, हमारी सीखने की क्षमता, हमारी याददाश्त, यहाँ तक कि हमारी उम्र और सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है।
सही।
ये नेचर का दिया हुआ सबसे पावरफुल तरीका है अपने दिमाग और शरीर को रोजाना रीसेट करने का।
रीसेट बटन।
ये किताब उस सोच को सीधी चुनौती देती है जो मानती है कि कम सोना मतलब ज्यादा मेहनत, ज्यादा कामयाबी। हाँ, जो आजकल बड़ा फैशन में है।
बिल्कुल। वॉकर कहते हैं ये एक बहुत खतरनाक गलतफहमी है। हम असल में नींद की कमी के एक ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रहे हैं जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं।
तो इस किताब का मकसद क्या है?
मकसद है हमें नींद के जो चमत्कारी फायदे हैं उनके बारे में बताना, और साथ ही इसकी कमी के जो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं उनसे भी आगाह करना।
अच्छा, तो ये किताब हमें एक तरह के सफर पे ले जाती है।
हाँ बिल्कुल। पहले वो समझाते हैं कि भाई नींद आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, इसके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं।
ठीक है।
फिर वो नींद की कमी के डार्क साइड को दिखाते हैं, कैसे ये अल्जाइमर, कैंसर, दिल की बीमारियों जैसी बड़ी समस्याओं से जुड़ी हुई है।
बाप रे।
फिर वो सपनों की रहस्यमयी दुनिया में ले जाते हैं, और आखिर में नींद की गोलियों के क्या खतरे हैं और समाज में क्या बदलाव लाने जरूरी हैं, इन सब पर बात करते हैं।
वाओ, काफी कुछ है इसमें।
हाँ तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, हमें नींद आती ही क्यों है? कौन है जो इसे कंट्रोल करता है? तो वॉकर दो मेन सिस्टम्स बताते हैं। पहला है सर्कैडियन रिदम।
सर्कैडियन रिदम,
इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर की अपनी एक अंदरूनी 24 घंटे की घड़ी है।
अच्छा, जैसे हमारे फोन में अलार्म क्लॉक होती है।
हाँ कुछ कुछ वैसा ही, पर ये बायोलॉजिकल है। ये हमारे दिमाग के एक बहुत छोटे से हिस्से में होती है, सुपर कियाज्मेटिक न्यूक्लियस, और इसे सिग्नल मिलता है रोशनी से।
रोशनी से।
हाँ, यही तय करती है कि हम दिन में कब ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे और कब हमें नींद आने लगेगी, और इसी से जुड़ा है वो क्रोनोटाइप वाला कॉन्सेप्ट।
अच्छा, मतलब कुछ लोग सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं, लार्क, और कुछ देर रात तक जागने वाले, आउल।
हाँ हाँ सुना है इसके बारे में, और दोनों ही नॉर्मल है, बस उनकी अंदरूनी घड़ी अलग अलग टाइम पर सेट होती है।
अच्छा, ये तो हुआ पहला सिस्टम, और दूसरा?
दूसरा है स्लीप प्रेशर, यानी नींद का दबाव।
देखिए, जब हम जागे होते हैं तो हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक केमिकल धीरे धीरे जमा होता जाता है।
एडेनोसिन?
हाँ
हाँ, जितना ज्यादा वक्त हम जागते हैं उतना ज्यादा ये एडेनोसिन जमा होता है और उतना ही ज्यादा हमें नींद महसूस होने लगती है।
अच्छा, तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है ये प्रेशर बढ़ता जाता है।
और फिर जब हम सो जाते हैं तो?
बिल्कुल, नींद का काम है इस एडेनोसिन को दिमाग से साफ करना, इसीलिए सुबह उठकर हम फ्रेश महसूस करते हैं।
अच्छा,
और हाँ, जो लोग कॉफी पीते हैं उनके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि कैफीन क्या करता है। वो इसी एडेनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, तो एडेनोसिन अपना काम नहीं कर पाता, इसीलिए कॉफी पीने के बाद हमें लगता है कि नींद भाग गई, जबकि असल में वो नींद का प्रेशर तो बनी रहा होता है।
वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। मतलब कॉफी हमें जगाती नहीं, बस नींद के सिग्नल को रोक देती है।
सही पकड़ा। अब ये बताइए कि जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है? क्या दिमाग बस बंद हो जाता है, शटडाउन?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दिमाग तो सोते हुए भी बहुत बिजी रहता है। देखिए, नींद के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं, NREM या नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद और REM या रैपिड आई मूवमेंट नींद, और पूरी रात हम इन दोनों के बीच साइकिल्स में घूमते रहते हैं।
NREM और REM, ये क्या बला है? थोड़ा आसान भाषा में बताइए।
हाँ, बताता हूँ। NREM नींद जो है वो रात के पहले हिस्से में ज्यादा होती है। इसमें भी सबसे जरूरी होती है गहरी नींद, या जिसे स्लो वेव स्लीप कहते हैं।
गहरी नींद?
हाँ, ये वो टाइम है जब शरीर अपनी मरम्मत करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी यादें पक्की होती हैं, कंसोलिडेट होती हैं।
यादें पक्की होती हैं?
हाँ,
कैसे?
वॉकर एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। हमारा हिप्पोकैम्पस, जहाँ नई यादें बनती हैं, वो एक तरह की USB स्टिक जैसा है, लिमिटेड स्टोरेज है उसमें।
अच्छा,
तो गहरी NREM नींद के दौरान दिमाग इस USB स्टिक से जरूरी जानकारी को कंप्यूटर की विशाल हार्ड ड्राइव यानी हमारे कॉर्टेक्स में ट्रांसफर करता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए।
वाह,
और इसमें स्लीप स्पिंडल्स नाम की दिमागी तरंगे बहुत मदद करती हैं।
स्लीप स्पिंडल्स, नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। तो मतलब यादों को सेव करने के लिए गहरी नींद बहुत जरूरी है।
बिल्कुल।
और ये दूसरी वाली REM नींद, उसका क्या काम है?
REM नींद रात के दूसरे हिस्से में, खासकर सुबह होने से ठीक पहले ज्यादा होती है। इस समय दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, लगभग जैसे हम जागे हुए हों।
सच में?
हाँ, आंखें तेजी से पुतलियों के नीचे घूमती हैं, इसीलिए रैपिड आई मूवमेंट। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा शरीर एक तरह से पैरालाइज्ड रहता है।
पैरालाइज्ड क्यों?
शायद इसलिए ताकि हम सपनों में जो कुछ भी कर रहे हों, दौड़ रहे हों, लड़ रहे हों, उसे असल में ना करने लगें।
सपने? हाँ, इसी REM नींद में हम सबसे ज्यादा और सबसे अजीब सपने देखते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, ज्वलंत भावनात्मक सपने। लेकिन REM नींद सिर्फ सपनों के लिए नहीं है, ये हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
इमोशनल हेल्थ के लिए कैसे?
ये हमारे दिमाग को मुश्किल या दर्दनाक यादों को प्रोसेस करने और उनसे जुड़ा जो इमोशनल बोझ है उसे कम करने में मदद करती है। वॉकर इसे एक तरह की रात भर चलने वाली थेरेपी कहते हैं।
रात भर की थेरेपी? वाह।
हाँ, और साथ ही ये अलग अलग यादों को जोड़ने और हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में भी बहुत अहम रोल निभाती है। ये NREM और REM के चक्र रात भर चलते रहते हैं, लगभग हर 90 मिनट में।
ये तो कमाल है। मतलब नींद के दौरान हमारा दिमाग कितना कुछ कर रहा होता है, हमें तो पता ही नहीं चलता।
सही कहा।
तो इसके फायदे क्या क्या हैं? अपनी याददाश्त और इमोशनल हेल्थ का तो जिक्र किया।
हाँ, तो सीखना और याददाश्त सबसे बड़े फायदों में से हैं। वॉकर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सीखने से पहले अच्छी नींद लेना जरूरी है, ताकि दिमाग नई जानकारी लेने के लिए तैयार हो, जैसे वो USB स्टिक खाली हो। और सीखने के बाद सोना तो और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि वो जानकारी दिमाग में ठीक से बैठ जाए, हार्ड ड्राइव में सेव हो जाए।
मतलब वो जो हम स्कूल कॉलेज में करते थे, रात भर जाग कर रट्टा मारना, वो तो बिल्कुल गलत तरीका था।
बिल्कुल, उससे अच्छा है कि पढ़कर अच्छी नींद ली जाए, वो ज्यादा असरदार है।
सही। और दूसरा बड़ा फायदा?
इमोशनल बैलेंस। देखिए, जब हम नींद पूरी नहीं करते तो हम ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना।
हाँ, ये तो होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद की कमी से दिमाग का जो इमोशनल सेंटर है, एमिगडाला, वो ओवर एक्टिव और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। REM नींद इसी एमिगडाला को शांत करने में मदद करती है।
अच्छा, लेकिन अगर हम नींद पूरी ना करें तो? किताब इसके परिणामों के बारे में क्या कहती है? मुझे लग रहा है ये पार्ट थोड़ा डराने वाला होगा।
हाँ, देखिए, वॉकर नींद की कमी के परिणामों को बहुत सीरियसली लेते हैं और हमें भी लेना चाहिए। फिजिकल हेल्थ पर इसका असर वाकई चिंताजनक है। कई बड़ी और गंभीर बीमारियों का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाता है।
जैसे कि कौन सी बीमारियां?
सबसे पहले नाम आता है अल्जाइमर रोग का। ये सुनकर तो मैं भी चौंक गया था।
अल्जाइमर? नींद से?
हाँ, वॉकर बताते हैं कि हमारी गहरी नींद के दौरान दिमाग में एक स्पेशल ग्लिम्फैटिक सिस्टम काम करता है। ये एक तरह की सफाई व्यवस्था है।
सफाई व्यवस्था?
हाँ, ये बीटा एमिलॉइड जैसे जहरीले प्रोटीन को दिमाग से बाहर निकालती है, और ये बीटा एमिलॉइड वही प्रोटीन है जो अल्जाइमर के मरीजों के दिमाग में जमा हो जाता है।
ओह माय गॉड!
अगर हम रोज पर्याप्त गहरी नींद नहीं लेते तो ये सफाई ठीक से नहीं हो पाती और ये जहरीला प्रोटीन जमा होता रहता है।
बाप रे, मतलब अच्छी नींद लेना अल्जाइमर से बचाव में मदद कर सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, और सुनिए, कैंसर का भी कनेक्शन है।
कैंसर का भी?
हाँ, वॉकर एक स्टडी का हवाला देते हैं। सिर्फ एक रात, अगर आप सिर्फ एक रात 4-5 घंटे सोते हैं तो आपके शरीर में कैंसर से लड़ने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, नेचुरल किलर इनके सेल्स, उनकी एक्टिविटी 70% तक कम हो सकती है।
क्या 70%? सिर्फ एक रात कम सोने से? ये तो यकीन करना मुश्किल
है ना? पर ये वैज्ञानिक तथ्य है। इसी तरह दिल की बीमारियों का खतरा भी नींद की कमी से सीधे जुड़ा है।
दिल की बीमारियां?
हाँ, वॉकर वो डेलाइट सेविंग टाइम का उदाहरण देते हैं, जब वसंत में घड़ी 1 घंटा आगे बढ़ाई जाती है और लोगों को 1 घंटा कम नींद मिलती है तो अगले ही दिन हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं।
सच में?
हाँ, और जब पतझड़ में वो 1 घंटा वापस मिलता है तो मामले कम हो जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि नींद का थोड़ा सा नुकसान भी हमारे दिल पर कितना भारी पड़ सकता है।
और वजन बढ़ना, डायबिटीज, क्या इनका भी कोई लेना देना है नींद से?
हाँ बिल्कुल है। नींद की कमी हमारे भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ देती है। एक हार्मोन है ग्रेलिन जो भूख बढ़ाता है, और दूसरा है लेप्टिन जो बताता है कि पेट भर गया।
अच्छा।
नींद की कमी से ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन कम हो जाता है। नतीजा, हमें ज्यादा भूख लगती है और खासकर मीठी और हाई कैलोरी चीजें खाने का मन करता है। इससे मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है।
हे भगवान, ये तो पूरी लिस्ट है बीमारियों की, और हमारे दिमाग पर, सोचने समझने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है?
उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। ध्यान लगाना, फोकस करना, लॉजिक लगाना, सही फैसले लेना, ये सब मुश्किल हो जाता है। वॉकर यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप कई घंटों से सोई नहीं है तो आपकी हालत लगभग वैसी ही हो जाती है जैसे आपने शराब पी रखी हो। गाड़ी चलाना तो उतना ही खतरनाक हो सकता है।
ओह,
मेडिकल रेजिडेंट्स पर स्टडीज हुई हैं, पता चला है कि नींद की कमी के कारण उनसे गंभीर मेडिकल गलतियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि नींद को नजरअंदाज करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।
बिल्कुल।
तो इस किताब से कौन से मुख्य संदेश या थीम्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए?
देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश तो यही है, नींद कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। ये खाना और कसरत के साथ तीसरा पिलर नहीं बल्कि वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी दोनों टिके हैं। सोचिए, इवोल्यूशन ने इसे इतने लाखों सालों तक क्यों बचाए रखा है अगर ये जरूरी नहीं होता?
सही बात है। दूसरा संदेश?
दूसरा बड़ा संदेश है आधुनिक नींद संकट। हमारी आज की लाइफस्टाइल, ये 24/7 बिजली की रोशनी, देर रात तक चमकती स्क्रीन्स, कैफीन का इतना इस्तेमाल, और सबसे बढ़कर वो हसल कल्चर।
हाँ, वो कम सो ज्यादा काम करो वाला कल्चर।
एग्जैक्टली, जो कम सोने को मेहनत और कामयाबी का तमगा समझता है। हम अक्सर गर्व से बताते हैं, अरे मैं तो बस 4-5 घंटे ही सोता हूँ। वॉकर कहते हैं कि ये गर्व की नहीं बल्कि चिंता की बात है।
और ये भारत में तो बहुत ज्यादा दिखता है, देर रात तक काम, बच्चों पर परीक्षा का प्रेशर, सोशल मीडिया का एडिक्शन।
बिल्कुल। तीसरा अहम थीम है, नींद एक तरह की प्रिवेंटिव मेडिसिन है। शायद ये सबसे पावरफुल आइडिया है।
प्रिवेंटिव मेडिसिन?
हाँ, रोज रात पर्याप्त और अच्छी नींद लेना शायद अल्जाइमर, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी अनगिनत बीमारियों के खतरे को कम करने का सबसे असरदार और मजे की बात, मुफ्त तरीका है।
मुफ्त तरीका, ये तो वाकई एक सुपर पावर है जो सबके पास है,
है ना? और चौथा संदेश है, बदलाव की जरूरत।
बदलाव किस तरह का?
ये बदलाव सिर्फ हमारी अपनी आदतों में नहीं लाना है बल्कि समाज के लेवल पर भी लाना है। जैसे वॉकर स्कूलों को थोड़ी देर से शुरू करने की बात करते हैं ताकि टीनेजर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से नींद मिल सके।
अच्छा।
वो कंपनियों से भी कहते हैं कि अपने कर्मचारियों की नींद का सम्मान करें, ऐसी पॉलिसी बनाएं। मतलब ये किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सल्यूशन की तरफ भी इशारा करती है।
इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सीधे असर करती हैं, जिन्हें हम कोट्स की तरह याद रख सकते हैं, पर असल में वो इन बड़े आइडियाज का सार है।
हाँ बिल्कुल। जैसे एक बहुत सीधी और सच्ची बात है, आपकी नींद जितनी कम होगी आपकी उम्र उतनी ही कम होगी। कितना डायरेक्ट है ये, नींद की ड्यूरेशन को सीधे सीधे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बड़ी बीमारियों से जोड़ता है।
उफ, एक और बहुत शक्तिशाली विचार है, नींद हमारे मस्तिष्क और शरीर के स्वास्थ्य को हर दिन रीसेट करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये नींद की परिभाषा ही बदल देता है। ये सिर्फ रेस्ट नहीं बल्कि एक जरूरी मेंटेनेंस और रिपेयर का काम है। पैसिव नहीं, एक्टिव प्रोसेस।
बिल्कुल, और जो लोग कुछ नया सीख रहे हैं, कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए ये लाइन बहुत काम की है। सिर्फ प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस जिसके बाद रात की अच्छी नींद आती है वो आपको परफेक्ट बनाती है।
वाह, यानी सीखना प्लस नींद इज इक्वल टू महारत, क्या बात है।
हाँ,
तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू कैसे करें। क्या किताब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देती है?
हाँ बिल्कुल देती है, और ये टिप्स हमारी भारतीय लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत काम की हैं। सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी चीज है नियमितता।
नियमितता
मतलब? मतलब कोशिश करें कि रोज एक ही टाइम पर सोएं और एक ही टाइम पर जागें। हाँ, वीकेंड पर भी। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन शरीर की अंदरूनी घड़ी को सेट रखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
दूसरा?
दूसरा है सोने का माहौल, एनवायरमेंट। अपना बेडरूम अंधेरा रखें, ठंडा रखें, आइडियल टेम्परेचर करीब 18.5 डिग्री सेल्सियस या 65 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया गया।
ठंडा?
हाँ, ठंडा और शांत। और सबसे जरूरी, सोने से कम एक घंटा पहले सारी स्क्रीन्स बंद कर दें, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। उनकी जो नीली रोशनी होती है वो नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को दबा देती है।
ये स्क्रीन वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है आजकल।
बिल्कुल। तीसरा, क्या खाएं पिएं, सब्सटेंसेस। दोपहर के बाद या खासकर शाम को कैफीन से बचें, चाय, कॉफी, कोला। आपको शायद पता ना हो पर कैफीन का असर 8 घंटे तक रह सकता है।
8 घंटे?
हाँ, और सोने से ठीक पहले शराब पीना भी ठीक नहीं। लोग सोचते हैं कि इससे नींद अच्छी आती है पर यह नींद की क्वालिटी को, खासकर रेम नींद को, बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करती है।
भारत में तो देर शाम चाय कॉफी पीने का बहुत चलन है, इस पर ध्यान देना होगा।
सही कहा। और आखिर में मानसिकता, अगर आप बिस्तर पर गए और 20-30 मिनट तक नींद नहीं आ रही है तो प्लीज लेटे लेटे चिंता मत कीजिए या जबरदस्ती सोने की कोशिश मत कीजिए।
तो क्या करें?
बेहतर है उठ जाएं, किसी दूसरी शांत जगह पर जाएं, डिम लाइट में कुछ हल्का फुल्का पढ़ें, स्क्रीन नहीं, या कोई शांत संगीत सुने। जब नींद आने लगे तब वापस बिस्तर पर जाएं।
अच्छा,
और सबसे जरूरी बात, वो जो कम सोने को मेहनत की निशानी या कूल समझने वाली सोच है ना, उसे बदलना होगा।
हाँ, उसे चैलेंज करना होगा।
बिल्कुल।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि नींद को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया है। ये सच में वेस्टेज टाइम नहीं है बल्कि हमारे शरीर और दिमाग का सबसे जरूरी मेंटेनेंस टाइम है। और वो ग्लिम्फैटिक सिस्टम वाली बात,
हाँ,
कि गहरी नींद में दिमाग अपनी सफाई करता है और अल्जाइमर से जुड़े टॉक्सिन्स हटाता है, ये जानना तो मेरे लिए सच में आंखें खोलने वाला था।
हाँ, मेरे लिए भी ये सबसे चौंकाने वाली बात थी। और ये एहसास कि ये सिर्फ हमारी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज को भी नींद के प्रति अपना रवैया बदलने की जरूरत है। स्कूलों का टाइमिंग, ऑफिस का कल्चर।
सही।
जब आप साइंस जानते हैं तो उस हमेशा भागते रहो वाले कल्चर पर सवाल उठाना, उसके खिलाफ खड़ा होना आसान हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात शायद ये थी कि नींद का असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ है हमारे इम्यून सिस्टम से लेकर हमारे इमोशंस तक, हमारी मेमोरी से लेकर हमारे दिल तक। शरीर का शायद ही कोई हिस्सा हो जो इससे अछूता हो।
सच में ये किताब हमें नींद के लिए एक नया सम्मान और एक नई गंभीरता सिखाती है। ऐसा लगता है कि इसे गंभीरता से लेना ही होगा।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।